कैसे फट से आपने मेरा हाथ पकड़ लिया कि कहीं मैं सच में नदी में छलांग ना मार लूं। कितना डरते हैं आप मुझे लेकर। आपको सच में लगता है कि मैं ऐसी बचकानी बेवकूफी भरी हरकत कर सकती हूं? कशिश के सवाल पर ईशान को जरा भी सोचना नहीं पड़ा। उसे कशिश की बीते वक्त की हरकतें याद आ गईं और उसने तुरंत ही जवाब दिया, जब तुम गली में बच्चों के साथ खेल सकती हो, बचकानी जिद कर सकती हो, बच्चों जैसी नाराजगी जाहिर कर सकती हो, तो कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारे शैतानी दिमाग का कोई भरोसा नहीं, और बेवकूफ नहीं, तुम पूरी की पूरी पागल हो। कब क्या कर जाओ कोई भरोसा नहीं, इसीलिए रिस्क लेना भी ठीक नहीं। उसका जवाब सुनकर कशिश के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। उसने ईशान की निगाहों में झांकते हुए संजीदगी से कहा, मिश्रा जी, चाहे मैं कितनी ही शैतान हूँ, चाहे कितना ही बचपना भरा हो मुझमें, चाहे कितनी ही उल्टी सीधी हरकतें करूं, एकदम झल्ली या आपकी भाषा में पागल बनकर रहूं, चाहे कितनी ही बेवकूफी भरी बातें करूं, पर इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं कि ऐसी कोई हरकत करूं मैं। इतनी अकल है मुझमें कि मैं आपके साथ यहां आई हूं, तो अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी आप पर आएगी। अगर मैं भीगी तो पड़ोस वाले और घर में सब आपको ही सुनाएंगे, और मैं आपको अपने वजह से कभी किसी के आगे ना तो शर्मिंदा होने दे सकती हूँ और ना ही अपने वजह से आपको किसी मुसीबत में फंसने दे सकती हूँ। परसों भी मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, मेरा मन नहीं लग रहा था कहीं, और दोपहर का वक्त था तो घर से लेकर बाहर तक सब सो रहे थे, सिर्फ वो छोटे छोटे बच्चे ही थे वहाँ, इसलिए मैं चली गई थी बाहर। तब अपनी नादानी में भूल कर गई मैं, ये नहीं सोचा कि अगर कोई आ गया, किसी ने मुझे उस हालत में वहाँ देख लिया तो क्या होगा। पर आप दोबारा जानकर कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आप आपके परिवार पर सवाल उठे या आप लोगों की बदनामी हो। आप निश्चिंत रहिए, अब मेरे वजह से आपको या आपके परिवार को कोई तकलीफ नहीं होगी। कशिश अपने स्वभाव से उलट आज बहुत गंभीर लग रही थी। उसकी बातों से साफ जाहिर था कि ईशान और उसकी फैमिली, उनकी इज्जत मान सम्मान कितनी अहमियत रखता है उसके लिए। ईशान बस कशिश को देखता ही रह गया। कभी कभी तो कशिश अपनी बचकानी हरकतों से ईशान को खूब परेशान और चिढ़ाती थी, पर कभी कभी इतनी समझदारी भरी बातें इतनी आसानी से बोल जाती थी कि ईशान अचरज भरी निगाहों से बस उसे देखा ही रह जाता था। शायद मन ही मन वो सोचता होगा कि क्या ये दोनों रूप एक ही लड़की के हैं। एक बार फिर कशिश की बातों ने ईशान की निगाहों को खुद पर ठहरने पर मजबूर कर दिया। कशिश ने जब ईशान की निगाहों को खुद पर टिके पाया तो उसने चुटकी बजाते हुए मुस्कुरा कर बोला, हेलो मिश्रा जी, बैठे बैठे किसके ख्याल में खो गए? किसी के भी नहीं। ईशान ने हड़बड़ाते हुए उस पर से निगाहें फेरी और सामने देखने लगा। कशिश कुछ देर खामोशी से ईशान के चेहरे को निहारती रही, जिस पर अब एकदम शांत भाव मौजूद थे, पर उस शांति के पीछे कितना बड़ा और भयानक तूफान छुपा था वो इस बात से वो पूरी तरह से अनजान थी। इस हकीकत से सिर्फ ईशान ही वाकिफ था। बस वही जानता था कि उसके चेहरे पर शांत भाव मौजूद थे, बिल्कुल वैसे जैसे इस वक्त गंगा की लहरें ऊपर से शांत प्रतीत हो रही थी, पर गहराई में अब भी हलचल मची थी। वैसे ही ख्यालों और यादों की हलचल ईशान के मन में भी मची थी। कशिश कुछ पल खामोशी से उसको देखती रही, फिर सौम्य सी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोली, मिश्रा जी, आखिरी बार आप कब आए थे यहाँ? कशिश के सवाल पर ईशान ने उस विशाल गंगा के छोर को अपनी निगाहों से देखने की असंभव कोशिश करते हुए जवाब दिया, जब मैं करीब 5 साल का रहा होगा तब पूरे परिवार के साथ यहाँ शाम की गंगा आरती देखने आया था। सबके साथ? कशिश के सवाल पर ईशान ने एक बार फिर गंगा की लहरों को देखते हुए हामी भरी, हाँ, हम सब आए थे, मम्मी पापा दीदी बड़ी मम्मी बड़े पापा चाचा चाची जयधर भैया जया दीदी, पर तब शुभिका और शुभ्रा नहीं थी, तब आप सब साथ ही रहते थे, मतलब सही मायनों में एक ज्वाइंट फैमिली की तरह साथ रहते थे। हाँ, तब हमारा परिवार एक संयुक्त परिवार हुआ करता था, पर एक तूफान आया और सब बिखर गया, घर एक होकर भी दो हिस्सों में बट गया, एक छत के नीचे रहते हुए दिलों में दूरियां आ गई। ऐसा क्या हुआ था? कशिश का ये सवाल सुनकर ईशान के चेहरे पर विषाद, गुस्सा, घृणा, वेदना और रोष जैसे कई भाव नजर आने लगे। अनायास ही उसकी पकड़ कशिश की हथेली पर कस गई। कशिश ने दर्द से अपनी आंखों को एक पल के लिए भींच कर लिया, फिर अपने दर्द को खुद में दबाते हुए उसने आंखें खोलकर ईशान को देखा और उसकी हथेली को अपनी दूसरी हथेली से थाम लिया। आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, पर खुद को तकलीफ मत दीजिए। ये तकलीफ, ये दर्द, ये घुटन सब उनका दिया हुआ है जिन्होंने मुझे ये जिंदगी दी, और इस तकलीफ का कोई अंत नहीं। ईशान की दर्द से सनी सरदावास कशिश के कान में पड़ी और उसकी आंखों में बेचैनी उतर आई। उसने ईशान की हथेली पर मजबूत दबाव दिया और मोहब्बत से उसकी दर्द को बटोरने लगी। तकलीफ कभी खत्म नहीं होती, पर जो बीती बातें हमें तकलीफ दें उन्हें भूल कर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। अगर भूलना संभव नहीं तो दर्द के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। हकीकत जैसी भी हो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, इससे तकलीफ कुछ कम हो जाती है। जो बात दर्द की वजह हो उसको खुद को ज्यादा प्रभावित नहीं करने देना चाहिए। गम को मुस्कुराहट से शिकस्त देनी चाहिए, इससे जिंदगी काफी आसान हो जाती है। और अगर ये सब मुमकिन नहीं तो अपने दर्द को किसी के साथ बांट लेना चाहिए, किसी को अपना हमदर्द हमराज बना लेना चाहिए। क्योंकि जब दर्द बेइंतहा हो और जख्म गहरा तो उसे अपने दिल में छुपाए रखने से वो जख्म नासूर बन जाता है और रह रहकर टीस देता है। अंदर दबा गुस्सा दर्द अंदर ही अंदर हमें खोखला कर देता है। उस दर्द को किसी से बांटने से मन हल्का होता है और जख्म पर प्यार का मरहम लगाने पर गहरे से गहरा जख्म भी एक ना एक दिन भर ही जाता है। दर्द बांटने से, किसी को अपने जख्मों से रूबरू करवाने से तकलीफ भले ही कम नहीं होती पर मन शांत हो जाता है और आगे की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। सीने पर रखा बोझ हल्का हो जाता है और जब हम अपने दर्द का सामना करते हैं तो उसे अपनाकर आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। कशिश बड़े ही प्यार से उसे समझा रही थी, या यूं कहें कि परोक्ष रूप से कशिश ने ईशान को अपना दर्द बांटने की सलाह दी थी। उसने जिंदगी की वो सीख दी थी जिसे वो अपनाती आई थी। ईशान कुछ पल खामोशी से गंगा की निर्मल निरंतर बहती धाराओं को देखता रहा, फिर दर्द भरी आह के साथ उसने कहना शुरू किया।